राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सब लोग पिछले कई दिनों से अपने जीवन के विकास के बारे में विचार कर रहे हैं और हमने पिछले दिनों एक बहुत लंबी विचारों की यात्रा की है। विचार इसलिए आवश्यक है ताकि वो हमारे आचरण को ठीक ठीक एक रूप दे सके। हमारे विचार की छाया आचरण पर पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि वे विचार हमारे बहुत सुदृढ़ हों। हमारे अंदर अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचार हैं और उन बुरे विचारों का संस्कार इतना प्रबल है कि हम चाहते हुए भी अच्छे विचारों के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते। तब हमने एक प्रक्रिया शुरू की थी कि जो वास्तविकता है संसार शरीर और देह की, उसका विचार किया जाए और भ्रम को तोड़ा जाए। भ्रम बहुत पुराना है, वो ठीक अंधेरे की तरह है, लेकिन बहुत पुराना अंधेरा है इसलिए बहुत मुश्किल से जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी रोशनी की आवश्यकता है, ये हमने विचार किया था और उसके लिए अनुप्रेक्षा की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें हमने अपने विचारों को सुदृढ़ बनाने के लिए संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता का अलग अलग ढंग से विचार किया था कि अनित्य हैं जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, पर उनके पीछे क्या छुपा हुआ नित्य है जो शाश्वत है वो हमें देखना चाहिए, तुम्हारा मन अपने आप शांत होगा। और जो अनित्य को मिटते हुए देख करके हम अशांत हो जाते हैं, उस अशांति से बच जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने सीखी थी और पिछले बार हमने ये भी विचार किया था कि वास्तव में अगर हमें अपना जीवन अच्छा बनाना है तो उसके लिए मार्ग एक ही है, वो है हमारी अपनी दृष्टि की निर्मलता, हमारे अपने ज्ञान की निर्मलता और हमारे आचरण की निर्मलता या पवित्रता। ये सब चीजें कैसे आती हैं तो उसके लिए भी हमने विचार किया था कि हमारे भीतर बहुत सारे विकारी परिणाम हैं, राग द्वेष रूप विकारी परिणाम हैं। हम 24 घंटे अपने पराये के खेल में उलझते चले जाते हैं, जिसे अपना मानते हैं एक दिन उसे ही हम पराया मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जिसे हम आज तक पराया मानते आए थे उसे ही किसी दिन अचानक हम ही अपना मान लेते हैं, जबकि यहाँ जो कुछ भी दिखाई देता है उसमें ना अपना है ना कुछ पराया है, जो है जैसा है उसे ठीक वैसा ही स्वीकार कर लेना, यह हमने पिछले दिनों सीखा था। इससे हमारी दृष्टि निर्मल होगी, इससे हमारा ज्ञान निर्मल होगा और इससे हमारा आचरण निर्मल होगा। जब तक हम तीनों चीजों को साइमल्टेनियसली एक साथ ठीक ठीक दिशा नहीं दे पाएंगे, अपने श्रद्धा को, अपने ज्ञान को और अपने आचरण को, तब तक हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा। और उसके लिए हमने यही समझा था कि हमें अब राग द्वेष घटाने की कोई प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। राग द्वेष घटाने से मेरा जीवन पवित्र होगा, ऐसी दृष्टि मुझे मिल गई। राग द्वेष घटाने से ही मेरा ज्ञान पवित्र होगा, ये मुझे बोध हो गया। अब मुझे वो प्रक्रिया भी करनी चाहिए जिससे कि राग द्वेष घटे। जिस चीज की हम श्रद्धा और ज्ञान हासिल करते हैं, उस चीज को पाने के लिए प्रयत्न भी आवश्यक है। हमारी श्रद्धा है कि हम परमात्मा स्वरूप हैं, हमारा स्वरूप सिद्धों के समान है, ये हमारी श्रद्धा है। सिद्धों का स्वरूप कैसा है, ये हमारे पास ज्ञान है, हमने जान लिया है कि सिद्धों का स्वरूप कैसा है। लेकिन अभी मेरे और सिद्धों के स्वरूप में जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, उन दोनों चीजों को, डिस्टेंस और डिफरेंस दोनों को दूर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने अंदर जो भी विकृतियां पड़ी हुई हैं, जो मेरी अपनी अज्ञानता की वजह से मेरे भीतर संचित हो गई हैं, जो मेरा अपना स्वभाव नहीं है, मेरी अपनी वैभाविक स्थिति है, उससे मुझे निरंतर बचना चाहिए और अपने स्वभाव की तरफ बढ़ना चाहिए। ये हमने शायद, अगर आप मेरे साथ उस विचार की यात्रा में रहे हैं तो मैं सोचता हूँ यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे कि हमें अपने उस विकारों से बच करके, विभाव से बच करके स्वभाव की तरफ दृष्टि डालनी चाहिए। दो ही उपाय होते हैं किसी भी चीज़ की प्राप्ति के, कि एक तो उस दिशा में आगे बढ़ा जाए और दूसरा उपाय जिस दिशा में मुझे नहीं जाना है उस दिशा से विमुख हुआ जाए, मुझे जो त्याज्य है उसे छोड़ा जाए, मुझे जो ग्राह्य है उसे ग्रहण किया जाए। दोनों प्रक्रियाएँ एक साथ ही आवश्यक है। हम पंचेंद्रिय के विषयों से भी विमुख होते जाएँ या विभावों से, राग द्वेष से विमुख होते जाएं और अपने आत्म स्वभाव की ओर बढ़ते जाएं, ये प्रक्रिया हमें निरंतर शुरू करनी होगी। ये अब व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है कि वो किस तरह अपने राग द्वेष को कम करे। हम लोग ऐसा नहीं है कि इतने ना समझ हों, कि नहीं समझते हों कि किस तरह हम राग द्वेष करते हैं और किन माध्यमों से होते हैं। हमारे उपादान में इतनी क्षमता तो नहीं है कि हम जैसा सोचें वैसा तुरंत के तुरंत घटित हो जाए। हमें तो बाह्य में वैसा निमित्त जुटाना पड़ता है और निमित्त मिल जाने पर हम बहुत जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं। ऐसे तो विरले ही लोग होते हैं जो कि निमित्त से प्रभावित ना हो। तो हम लोग जब बाह्य निमित्त से प्रभावित हो जाते हैं तब हमें उन निमित्तों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं भाई, जिन निमित्तों के मिलने से हमें राग द्वेष ज़्यादा होता है, अब हम उनकी अपने जीवन में कमी कर देंगे, और जिन निमित्तों के मिलाने से और हमारे अंदर राग द्वेष की कमी होती है, हम वैसी कोशिश करेंगे। ये हमारा अपना डिसीजन। इसके लिए बहुत ज़रूरी क्या है, मैं सोचता हूँ कि आज तीन बातें हम सीख लें। ये स्वयं ही करना पड़ेगी प्रक्रिया। मैं कोई एक बंदी बंधाई प्रोसीजर नहीं दे रहा हूँ कि आप सुबह से जगें और ऐसा करें और फिर बाद में नहा धो करके मंदिर जाएं और फिर पूजा करें और फिर जो शाम तक का एक शेड्यूल आप तय कर लें, ठीक है, ये भी एक प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन वो एक शेड्यूल हम फिक्स कर लेते हैं और मैकेनाइज्ड हो जाते हैं, हमारी एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, फिर उस प्रक्रिया में से भावात्मकता गायब हो जाती है, प्रक्रिया फिर भी रही आती है। तो मैं वो चीज नहीं देना चाह रहा हूं। राग द्वेष को घटाने की प्रक्रिया हमारी अपनी स्वयं की होनी चाहिए। हम देखें जहां जैसा आवश्यक है वहां हम वैसा तुरंत निर्णय ले सकें। इसके लिए पहली जरूरत है सजगता। जिस व्यक्ति को अपने राग द्वेष को घटाना है उसे सजग होना पड़ेगा। तो सजग तो हम लोग हैं, अगर देखा जाए तो हम बहुत सजग हैं। अपने शरीर के मामले में हम बहुत सजग हैं, अपने इंद्रिय और मन के मामले में हम लोग बहुत सजग हैं। हमारा मन क्या चाहता है हम फौरन वो चीज़ें जुटाने की कोशिश करते हैं। हमारी इंद्रियों को क्या अच्छा लगता है हम वो जुटाने के लिए बहुत सजग हैं। हमको कौन सा कलर अच्छा लगता है हम वो अरेंज कर लेते हैं। हमको कौन सा टेस्ट अच्छा लगता है हम वो अरेंज कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो और कोई भी खराब सी चीज़ होती है तो हम वहाँ से अपने को तुरंत हटा लेते हैं। इतने तो हम सजग हैं अगर देखा जाए तो। शरीर के बारे में भी हम सजग हैं कि ये गंदा नहीं हो जाना चाहिए, गंदा हो भी जाए तो कम से कम दिखना नहीं चाहिए गंदा, इसलिए जो है अगर पसीना आ भी रहा है तो परफ्यूम लगाओ। हम सजग हैं। देखना अगर देखा जाए गौर से इस तरह तो हम अपने शरीर और मन और इंद्रियों के बारे में बहुत सजग हैं, और उन शरीर और इंद्रिय और मन की सजगता से हम निरंतर प्रेरित होकर के और जरा भी सजग नहीं है अपने उस आत्मा के प्रति। भले हम भेद विज्ञान की बात कर लेते हो, भले हम शरीर और आत्मा को अलग अलग मान लेते हो, हमारा श्रद्धान भी बहुत प्रगाढ़ है कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, लेकिन इसके बाद भी हमारा शरीर के प्रति कितना सजगता है और हमारी आत्मा के प्रति कितनी विमुखता है, ये हमें देखना पड़ेगा, बहुत गौर से देखना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा शरीर के सेवा में लगा हुआ है वो उतना ही कम आत्मा की तरफ दृष्टि डाल पाएगा। सुबह से शाम तक पंचेंद्रिय के विषयों में अगर हम लगे हुए हैं उन्हीं को जुटाने में, तो बताइएगा घंटे भर बैठ करके किताब खोल करके और मेरे आत्मा का स्वभाव क्या है ये जान लिया, इतने अकेले से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, हम उनसे बेहतर हैं जो लोग इससे विमुख हैं, बिल्कुल, घंटे भर भी वो अपने आत्मा के स्वरूप के बारे में नहीं जान रहे, पर हम इतने तक आ गए हैं तो और आगे तो बढ़ना चाहिए। अभी तो हम सिर्फ घंटे भर जब किताब खोल के बैठते हैं तब थोड़ा सा आत्मा का स्वरूप ध्यान में आता है, बाकी तो 23 घंटे हमारे शरीर और इंद्रिय और मन के आसपास ही गुजर जाते हैं, हम जरा भी जो है उनसे विमुख होकर के और उस आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। तो हमें अब थोड़ी सी अपनी सजगता पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी सजगता आत्मा की तरफ है या कि हमारी सजगता देह की तरफ है। देह के प्रति सजग रहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि ये देह मेरे धर्म ध्यान में सहायक बन रही है या नहीं बन रही है। अगर सहायक बन रही है तो ठीक है, इसका पोषण हम करेंगे इसको धर्म ध्यान में लगाए रखने के लिए, लेकिन ये अगर विषय कषायों में लगती है तो मैं सजग हूं कि इस देह के द्वारा विषय कषाय की पूर्ति नहीं होने दूंगा। इन इंद्रियों और मन के विषयों की पूर्ति के लिए तो मैं अपना पूरा जीवन भी लगा दूं तब भी जो है इससे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। हम लोग बहुत विचार करने की चीज है, अपन विचार कर रहे हैं, मैं तो हमेशा जो है इस तरह का विचार आता ही रहता है हमेशा कि अरे कैसा करते हैं अपन। शरीर के पतित होने से, शरीर के नष्ट हो जाने से हम बहुत जल्दी चिंतित हो जाते हैं, जरा सा हमको तो 24 घंटे झेलना पड़ता है एक तरह से। महाराज थोड़े कमजोर से दिखा रहे, महाराज थोड़े अस्वस्थ से दिखा रहे, भाई आप क्या देख रहे हैं, आप शरीर ही ना देख रहे हैं, और मैं शरीर नहीं भी देखना चाहूं तो मुझे दिखाना चाह रहे हैं आप, मुझे सजग करना चाह रहे हैं मेरे शरीर के प्रति, जबकि मैं उस शरीर से बेखबर होकर के और जिसकी खबर लेनी चाहिए उसकी खबर लेता हूं। तो लेकिन अपन लोगों का है ही ऐसा, बन ही गया, इसी को अपन सोचते हैं कि आगे ऐसा नहीं पूछेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अरे महाराज से स्वास्थ्य का तो पूछ लो, स्वास्थ्य का पूछने का अर्थ, और हम आपस में भी एक दूसरे का स्वास्थ्य ही देखते हैं, दिखता क्या है, शरीर दिखता है, आत्मा किसको दिखाई पड़ती है, चेतना किसको दिखाई पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चेतना दिखाई नहीं पड़ती। चेतना की समृद्धि का विचार करना, चेतना कितनी स्वस्थ है, मन कितना स्वस्थ और पवित्र है, ये भी हमें देखना चाहिए, शरीर कितना स्वच्छ है, शरीर कितना पवित्र है, ये तो हम 24 घंटे इस बात का ध्यान रखते हैं, लेकिन शरीर की पवित्रता के साथ मेरे मन की पवित्रता बनी हुई है कि नहीं है, मेरी चेतना की पवित्रता बनी हुई है कि नहीं है, ये भी हमें जो है इतनी सजगता तो होनी चाहिए। पहली चीज हम विचार करें कि हम अपने शरीर के प्रति सजग हैं या कि हम अपनी चेतना या आत्मा के विकास के प्रति सजग हैं। जो व्यक्ति अपने चेतना के प्रति सजग होगा वो व्यक्ति सुबह से शाम तक उस चेतना को अपवित्र करने वाले राग द्वेष परिणामों से निरंतर बचने की कोशिश करेगा। कोई वो नहीं है, मैं तो कई बार देखता हूं कुछ लोग जिनको कि हम बहुत ऑर्डिनरी मानते हैं कि अरे ऐसे लोग भी हो सकते हैं। एक अम्मा जी हमको कटनी में मिली, वो जब हम सामायिक करके उठते तो हम देखते कि वो 12:30 के लगभग आ जाती और बैठ जाती, वहां वाचनालय था उसमें किताब शास्त्र खोल के पढ़ती रहती, घंटे 2 घंटे तक वो पढ़ती रहती थी। एक दिन मेरा मन हुआ, मैंने उनसे पूछा कि अम्मा जी क्या पढ़ती हैं आप, बहुत तल्लीनता से पढ़ती थी, तो हाथ जोड़ ली उनने, महाराज धवला जी पढ़ रहे, धवला जी षटखंडागम है धवला। हमने कहा आपको समझ में आता है अम्मा जी, समझ में तो नहीं आता महाराज। अरे आपको समझ में नहीं आता फिर भी आप पढ़ते हैं, क्या करें महाराज, घर में बैठेंगे तो यहां वहां की चर्चा होगी, चार लोगों के बीच बैठेंगे तो यहां वहां की चर्चा होगी। हम तो ग्रंथ को समझ में नहीं आता पर श्रद्धा से पढ़ते हैं, आचार्यों ने हम पर कृपा करके लिख दिया है, तो कम से कम बांचने का और इन कानों से सुनने का भी तो हमें अवसर प्राप्त करना चाहिए। ये मुंह पवित्र हो गया, उच्चारण करने से कान पवित्र हो गए, अपने ही द्वारा किए गए धर्म के सूत्रों के उच्चारण से पवित्र हो गए। इस तरह अपने मन और इंद्रियों को समय निकाल करके और हम अगर पवित्र करने की कोशिश करें तो फिर भी ठीक है। विनोबा कहते थे कि मन और इंद्रियां, इन दोनों को कहीं फेंक देने की आवश्यकता नहीं है, मन और इंद्रियों का सदुपयोग करना और ऐसे करना जिससे कि आत्मा मलिन न हो पाए, वही सजगता कहलाएगी। जो व्यक्ति अपने चेतना के प्रति सजग है वो उसको मलिन होने नहीं देगा, और मलिनता तो मन और इंद्रियों के पोषण से आती है, इसलिए मन और इंद्रियों का पोषण नहीं करूंगा बल्कि मैं सजग रहूंगा। एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, एक साधु बाबा जी थे तो वो तीर्थ यात्रा के लिए निकले, तो निकले तो रास्ते में उनका बहुत मन हुआ कि दाल बाटी खाई जाए। वो वैसे वाले साधु जी थे, अपने हाथ से बना लेते थे और खा लेते थे, तो अब किससे कहें कि दाल बाटी खाएं, तो किसी से दाल मांग लिया, किसी से आटा मांग लिया और एक नदी के किनारे जो है बैठ करके उन्होंने कहा कि आज तो बनाई जाए, और बहुत दिन से मन कर रहा है कि दाल बाटी खानी चाहिए। ठीक है, बनाना शुरू कर दिया। अब लोटा तो छोटा सा था, सो उसमें पानी जितना था वो खत्म हो गया, जब तक दाल बाटी बनी पानी खत्म हो गया। अब खाने की समय आया तो सोचा कि क्या करें, उतनी दूर उधर नदी से पानी भर करके ले आए या कि पहले खा लें फिर खाने के बाद फिर पानी पीने वहीं चले चलेंगे। बड़ा मन में हुआ पोह मचा, एक मन कहे कि जल्दी खा लो, इतने दिन से तो अपन सोच रहे थे बन गई है अब देर न करो, है तो बहुत उनके मन में आया कि नहीं खा ही लो। फिर एक मन कहे कि नहीं अच्छा नहीं, इतनी आकुलता भी नहीं होना चाहिए, चलो पानी भर के लाते फिर आराम से बैठ करके खाएंगे पानी पियेंगे। और आखिर वो पानी भरने के लिए चले, और वहां से जब जा रहे थे तब भी मन में सैकड़ों बार आया कह रहे खा लेते खा लेते, वापिस लौटे पानी भर के तब भी वही खा लेते चल रहा था। वापिस आए तो पानी तो रखा एक तरफ, दाल बाटी जितनी थी सबकी इकट्ठी करी और जोर से जो है फेंकी, सो सीधी जाकर के नदी में गिरी, और वही जो दाल बाटी बनाने की राख पड़ी थी सो एक मुट्ठी उठाई और उसमें पानी में घोली और चुपचाप पी गए। एक व्यक्ति देख रहा था, उन्होंने कहा जी बाबा जी लोगों का हिसाब देखो, इतनी मेहनत से बनाई और फिर इनके मन में पता नहीं क्या आई और पूरी उठा करके फेंक दी और उसमें पानी भी सीधा पी लेते तो ही ठीक था, उसमें राख डाल के पी लिया। तो पूछा कि बाबा जी आखिर बात क्या हो गई, कहने लगे जी ऐसा ही मानेगा। कौन की कह रहे, कौन है यहां पर जिसकी कह रहे कि ये ऐसा ही मानेगा, कहते ये जो भीतर बैठा है मेरा मन है ना, ये मैं इतने दिन हो गए मैं इसको समझाता हूं कि कितनी बार खाई होंगी दाल बाटी, लेकिन बार बार कहता है कि खाऊंगा। मैंने कहा अच्छा खा ले, तो मैंने बड़े उससे तो मिन्नतें करके लोगों से और सबको जोड़ा, अब मैं इसको बार बार समझाता हूं कि पानी पहले ले आऊं फिर खाऊं, लेकिन ये मानते नहीं। तो मैंने कहा ऐसे नहीं मानोगे बच्चू, तो अब तो मान गए, अब खा लो का खाते, अब नहीं कहोगे बार बार, और वो पानी वैसा वाला पी लो राख डला। मन को जीतने के लिए मन का पोषण नहीं करना, नहीं तो मन का जितना पोषण होता जाएगा वो उतनी मनमानी करेगा, ये अपन अपने अनुभव से जानते हैं। एक चीज पूरी करते देर नहीं हुई कि दूसरी चीज मन में आ जाती कि जा और कर लो, जा भी मन में आई थी अपने, और उसके द्वारा मेरी आत्मा का पतन हो रहा है तो फिर क्यों कर लो। मैं निरंतर जो है पराश्रित होता जाता हूं, परावलंबी हो जाता हूं। आज वर्तमान में देखें अपन कितना परावलंबन आ गया है, और वो परावलंबन ही हमारे राग द्वेष का कारण बनता है। जरा सी गर्मी हो गई तो हमको प्रबंध चाहिए ठंडक का, जरा सी ठंडक हो गई तो हमको प्रबंध चाहिए गर्मी का। एक एक इच्छाएं जो कहना चाहिए उन सबको हम पूरा करने के लिए तो सजग हैं, लेकिन उनसे मेरे आत्मा की कितनी क्षति होती है इसके प्रति भी थोड़ा सजग हो जाएं। जो व्यक्ति इस तरह अपने आत्मा के प्रति सजग है उसे मलिन नहीं होने देना चाहता, वो व्यक्ति जो भी करेगा वो श्रेष्ठ ही होगा। फिर चाहे वो पूजा करे, चाहे स्वाध्याय करे, और चाहे वो गुरुओं की उपासना करे, या संयम तप और त्याग करे, छह आवश्यकों में से कुछ भी करे, लेकिन सजग हो अगर तो ही वो बच पाएगा। नहीं तो हम पूजा करते हुए भी और अपने मन को मलिन ही रखे रहें और पूजा की प्रक्रिया पूरी कर ले में। हो सकता है कि हम स्वाध्याय कर रहे हों और पढ़ रहे हों और बीच बीच में देखो जायस ये लिखी बेहसी कहते, अब अगर मालूम पड़ जाए तो उनको समझे हैं कि जायस ये लिखी, अपने कल्याण के लिए पढ़ रहा हूं जा नहीं, फलाने मिल जाए सो उनसे जायसी कहें कि जा लिखी, हवाला दे के बताएं कि जायसी लिखी है, इसके लिए पढ़ रहे क्या? अगर इसके लिए स्वाध्याय कर रहे हैं तो बताइएगा फिर कौन सी सजगता कहलाई। हम सारी, मैं बार बार वही चीज कह रहा हूं कि क्रियाएं हम अच्छी करें और हमारे अगर सजगता ना हो तो फिर उन क्रियाओं के द्वारा राग द्वेष की हानि नहीं होगी। हमारा एम क्या है? राग द्वेष जैसे बने तैसे कम हो। एक अम्मा जी और हमको दुर्ग में मिली, वो कहती थी कि हमें महाराज 25 सामायिक का नियम दे दो। 25 सामायिक? हम तो 3 सामायिक करते दिन भर में। कहते सामायिक मतलब हमारा कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग वो श्वेतांबर थी, तो 25 कायोत्सर्ग करेंगे दिन भर में। बताइए कैसे करेंगे 25 कायोत्सर्ग? बोले ऐसे करते हैं कि खाना बनाने बैठे हैं, अब देखा कि कोई आ ही नहीं रहा, 4 रोटी तो बन गई है, जब कोई आएगा तो फिर बना लेंगे, उतनी देर में एक कायोत्सर्ग कर लेंगे। पाप के बीच भी, कर्म बंध के बीच भी, राग द्वेष की परिणति के बीच भी मैं सजग हूं कि मैं कैसे इसको ब्रेक करूं। अवसर है मुझे राग द्वेष करने का, लेकिन मैं उस अवसर को कैसे बदल करके धर्म ध्यान का अवसर प्राप्त कर लूं, मैं किस तरह अपने परिणामों को स्थिर बना लूं, किस तरह अपने परिणामों को निर्भर कर लूं, यह सजगता कहलाएगी। और दूसरी चीज सरलता होनी चाहिए। जो व्यक्ति सजग होगा वो व्यक्ति सरल जरूर होगा। सरलता के मायने ये है कि वो आडंबर और दिखावे में नहीं पड़े, वो दुराव छिपाव नहीं करेगा, जो जैसा है वैसा का वैसा वो अपने को स्वीकार कर लेगा। हम लोगों के साथ मुश्किल ये है कि हम जैसे नहीं हैं वैसे दिखने की कोशिश करते हैं, नहीं है हर एक के भीतर ये चीज होती है कि जैसे मैं झूठा हूं अगर तो मैं कोशिश तो ये करूंगा कि लोग मुझे सच्चा समझें, मैं सच्चा हूं तब तो मैं कोई चेष्टा करूंगा ही नहीं ये बताने की कि मैं सच्चा हूं, लेकिन जब जब मैं ये चेष्टा करता हूं कि मैं सच्चा हूं ये बताऊं लोगों को, या लोग मुझे अच्छा माने भले ही मैं बुरा रहा हूं, तो ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। मैं अच्छा रहूं और लोग भले ही मुझे बुरा माने इसमें मेरा कुछ बिगाड़ नहीं है, लेकिन मैं बुरा बना रहूं और लोग मुझे अच्छा माने, इस तरह की अगर मेरी भावना है तो इससे मेरा अहित ही होने वाला, ये मेरे को कॉम्प्लिकेटेड करने वाली चीज है, मेरे को बहुत कहना चाहिए कॉम्प्लेक्स में डालने वाली चीज है। ग्रंथि, जो व्यक्ति अपनी ग्रंथियों को तोड़ लेता है वही राग द्वेष की ग्रंथियां हैं, उनको जो व्यक्ति तोड़ लेता है वही ना सरल होता है। तो अगर हम अपने जीवन में सरलता लाएं तो हमारी ग्रंथियां, हमारे कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे खत्म होंगे, हम जैसे हैं वैसे हम दिखाई देने लगेंगे और हम स्वयं भी अपने को वैसे ही दिखाई देख पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम दूसरे के संदर्भ में देखते हैं अपने को, दूसरे में अच्छा मानते हैं तो ठीक है हम अच्छे तो हैं, हम ऐसा सोच करके संतुष्ट हो जाते हैं, हमारी जय जयकार हो रही मतलब ठीक है सब, अब हम भीतर चाहे जैसे हो ये कहलाता है दिखावा, ये कहलाता है आडंबर, धीरे धीरे ये बढ़ता चला जा रहा है। एक और उदाहरण दे देता हूं इसके लिए ताकि जल्दी समझ में आ जाए। एक व्यक्ति ने फोटोग्राफी के लिए स्टूडियो खोला, तो उसने मालूम क्या, बहुत होशियार था वो, कोई दार्शनिक वार्शनिक रहा होगा, तो उसने अपने बाहर एक लिस्ट टांगी जिस पर रेट लिखे हुए थे, आप जैसे दिखना चाहते हैं लोगों को वैसा वाला फोटो उतरवाने का 25 रुपए, आप चाहते हैं कि जैसे हम बने वैसा वाला फोटो उतरवाने का 20 रुपए, और आप जैसे हैं वैसा फोटो उतरवाने का 5 रुपए, आप जैसे लोगों को दिखना चाहते हैं वैसा फोटो 25 रुपए, आप जैसे बनना चाहते हैं वैसा 20 रुपए का, और जैसे आप हैं वैसा फोटो करवाना हो तो ओनली 5 रुपीज, सिर्फ 5। वो कहता है कि मेरे दुकान पर मैंने सोचा था कि 5 रुपए वाले लोग आएंगे, लेकिन मैंने वर्षों दुकान करी, 5 रुपए वाली फोटो किसी ने नहीं उतरवाई, 25 और 20 रुपए वाली फोटो बहुत लोगों ने उतरवाई। इससे क्या साबित होता है, मैं जैसा हूं मैं अपने को वैसा खुद भी देखना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अच्छा नहीं हूं, इसलिए मैं अगर कोई मेरे सामने दर्पण या की फोटो मेरी ला करके रख दे तो मैं पसंद नहीं करूंगा, मैं तो वो पसंद करूंगा जैसा कि मैं लोगों को दिखना चाहता हूं, वो फोटो अगर मेरी कोई खींच दे तो मैं वो भी देखना पसंद करूं। हम दूसरे के संदर्भ में देखना पसंद करते हैं, अपने संदर्भ में खुद को देखना पसंद नहीं करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे भीतर आ गए हैं, सबके भीतर है, ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं कोई बहुत अलग बात कह रहा हूं। यही तो रागद्वेष की परिणति है भैया, इसको चाहे शास्त्र की भाषा में रागद्वेष की परिणति और ग्रंथि कह लो। और निर्ग्रंथ होने का अर्थ ही है कि हम सरल हो गए, ट्रांसपेरेंसी हमारे भीतर आ गई, एक पारदर्शिता आ गई, जैसा है वैसा बाहर, जो भीतर है वो बाहर। इस तरह अगर हम अपने जीवन को निरंतर बनाने की कोशिश करें, सरल होने की कोशिश करें, तो कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने उन राग द्वेष को ना कम कर सकें। और तीसरी बात है संवेदनशीलता। तीन चीजें हो गई, सजगता, सरलता और संवेदनशीलता। ये हमारी अपनी वास्तविकता है, ये हमारी अपनी ओरिजिनलिटी, ये हमारा अपना स्वभाव है। हम अपनी चेतना के प्रति सजग हैं, हम अपने चेतना को कभी भी भ्रम में नहीं डालते हैं, ये हमारी सरलता है। जैसी हमारी चेतना है वैसा हम देखते हैं। अगर मलिन है तो ठीक है, आज मलिन है, लेकिन मेरा स्वभाव मलिनता नहीं है, मेरा स्वभाव तो निर्मलता है, मैं उसको प्राप्त कर लूंगा। लेकिन अपनी मौजूदा स्थिति को मुझे स्वीकार तो करना पड़ेगा, मैं जिस तरह से अपना जीवन जी रहा हूं उसको मुझे स्वीकार तो करना पड़ेगा। ठीक है कि मैं उससे बेहतर होना चाहता हूं, मैं अगर अस्वस्थ हूं तो मुझे अपने अस्वस्थ को स्वीकार करना पड़ेगा, तब ना मैं अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित होऊंगा और स्वास्थ्य के लिए कोई प्रयत्न करूंगा। इसलिए सरलता भी आवश्यक है। और तीसरी चीज संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता भी अगर देखा जाए तो हम लोगों के अंदर बहुत है, ऐसा नहीं है कि हम संवेदनशील नहीं है। हम गंध के बारे में बहुत संवेदनशील है, हमको कौन सी गंध अच्छी लगती है, हम कलर के बारे में बहुत संवेदनशील है, हमको कौन सा कलर अच्छा लगता है, रूप रस गंध और वर्ण या स्पर्श, हम इन चारों के प्रति, और इनके और विषय देख लें तो 20 होते हैं कम से कम, हम इनके प्रति बहुत संवेदनशील हैं। ये हल्का है कि भारी है, ठंडा है कि कैसा है, इन सब के प्रति हम बहुत संवेदनशील हैं। हम यहां तक संवेदनशील हैं कि कोई हमको कड़ी बात कहे तो हमको दुख पहुंचता है, लेकिन हम इसके लिए संवेदनशील नहीं है कि हमारी कड़ी बात से दूसरे को दुख पहुंच सकता है। इतनी संवेदनशीलता हमारे पास नहीं, इतनी तो है कि दूसरा अगर हमें कड़ी बात कहेगा, हमारे मन की बात नहीं कहेगा, तो हमको दुख पहुंचेगा। ये संवेदनशीलता तो है, और जहां मेरे स्वार्थ पूरे होते हैं, मुझे वो करना है, ये संवेदनशीलता मेरे अंदर है, लेकिन मेरे अपने व्यवहार से, मेरे सुबह से शाम तक की क्रियाओं से दूसरे को भी क्षति पहुंच सकती है। दूसरे को पहुंचे या ना पहुंचे, मेरे अपने परिणामों में अगर मैं मलिनता लाता हूं तो मेरी ही क्षति है, इस बात के लिए मैं संवेदनशील नहीं हूं। बहुत गौर से देखना पड़ेगा। ये संवेदनशीलता भी हमारे राग द्वेष को कम कर देती है, क्योंकि हम अगर अपने आत्मा के प्रति संवेदनशील हैं, अपने आत्म विकास के प्रति संवेदनशील हैं, तो हम ऐसा कुछ क्यों करेंगे जिससे कि हमारी ही क्षति होगी या कि दूसरे की भी क्षति होती, उसकी चेतना के लिए तकलीफ पहुंचती है, तो वो अल्टीमेटली हमारी अपनी ही क्षति है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारी संवेदनशीलता को भी हम दिशा दे सकते हैं। हम सब सजग भी हैं, लेकिन इंद्रियों के प्रति, शरीर के प्रति सजग हैं। हम लोग सरल भी हैं, सरल इन मायनों में हम लोग हैं कि हमें अपना जैसा हम चाहते हैं वैसा हम दिखाना पसंद करते हैं, लेकिन हम जैसे हैं वैसा हम दिखाना नहीं पसंद करते हैं। हम संवेदनशील भी हैं, इंद्रिय के विषयों के प्रति हम संवेदनशील हैं, कलर के प्रति, ऑर्डर के प्रति, और भी जो चीज़ें हमें दिखाई पड़ती उनके प्रति हम संवेदनशील हैं। हमें थोड़ा सा दिशा चेंज करनी होगी। एक और उदाहरण सुनाता हूँ संवेदनशीलता का, फिर आप खुद विचार करिएगा। मैं तो सोचता हूँ कि मैं तो थोड़ी सी बातें आपसे कहता हूँ, हिंट करता हूँ आपको, आप स्वयं जाकर के होमवर्क करें। ये प्रक्रिया अपन को शुरू करना पड़ेगी, नहीं तो अपन लोगों को एक प्रवचन सुनने का एक जैसा वो नहीं हो गया है कि बस सुनना है और सुन करके चले जाना है। बहुत अच्छा कहा महाराज, बहुत अच्छा बोले थे, ये तो बढ़िया बोलते हैं, एकदम सदा हुआ है उनका प्रवचन और दुनिया भर की बातें, पर क्या बोलते हैं, क्या मेरे जीवन को अच्छा लगता है, कैसे मैं अपना जीवन सुधारूं, इसके प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। मुझे लगने लगता है कि वैसे तो एक हफ्ते में एक दिन भी अगर हम इन सब बातों को सुने और फिर पूरा हफ्ता हम इसके लिए प्रयत्न करें कि इसके आगे और मैं क्या कर सकता हूं, तब तो शायद हमारा ये सुनना भी सार्थक होगा। फिर भी मैं एक घटना सुनाता हूँ, वो विवेकानंद के जीवन की है, अच्छी घटना है। वो जब बचपन में खेल खेला करते थे तो गांव के पास में उनके मेला लगा हुआ था, वो मेला देखने गए, माँ से पैसे ले गए थे, 10-11 साल के रहे होंगे, नरेंद्र नाम था उनका, गए वो मेला देखने और वहां से गुड्डा गुड़िया लेके आए। अब तो नहीं बिकती, अब तो प्लास्टिक की बिकने लगी कि अगर तोड़ने का मन हो तो पटक दो। लेकिन पहले पहले माटी की बनाई जाती थी कि अगर जरा सा भी चूके तो तुम्हारे हाथ से गिर करके और टूट जाने वाली है वो गुड़िया जो भी खरीद के लाए। पहले लोग इतने सेंसिटिव हुआ करते थे, वो सजग हुआ करते थे। अब आज जो है हमने चेंज कर दिया सब कुछ। इसी से तो मालूम पड़ता है हमारे हमारे जो टूल्स हैं, हमारे जो खिलौने हैं, मैं तो उन तक को सोचता हूं कि कितना चेंज हो गया। माटी के बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था कि संभाल के रखना, किसी भी क्षण टूट सकते हैं। इसी तरह जीवन भी है माटी के समान, किसी भी क्षण टूट के गिर सकता है। अब तो हम इतने पुख्ता बनाते हैं कि हमें कभी भी नष्ट होते मालूम ही नहीं पड़ते, हमें कभी अनित्यता का बोध ही नहीं होता। कागज तो फाड़ा जा सकता है, पॉलीथिन नहीं फाड़ा जा सकता आसानी से, लेकिन अब कागज गायब है, पॉलीथिन आ गया। इतनी छोटी चीज पे विचार कर रहा हूं मैं यहां इस मंच पे बैठ करके। आप इनको सोचेंगे कि अरे इससे आत्मा का क्या संबंध, लेकिन इन सब चीजों से हमारी चेतना का बहुत संबंध है, क्योंकि ये सब चीजें हमारी चेतना की गवाही देती हैं कि हमारी चेतना किस तरह हो गई है। तो वो माटी के खिलौने गुड्डा गुड़िया खरीद करके वापस लौटते हैं और अचानक देखते हैं कि एक इक्का चला रहा है, तांगा चला रहा है, बहुत तेजी से चला रहा है, और एक माता पिता अपने छोटे से बेटे को संभाल रहे हैं, और वो बेटा जो है भाग रहा है हंसते हुए और रोड की तरफ, और वहां से इक्का बहुत तेजी से आ रहा तांगा। उनको एक क्षण को लगता है कि ये तो इसके नीचे आ जाएगा, 3 साल का तो बेटा है ये, और माता पिता उसको पकड़ रहे हैं, संभाल ही नहीं रहे। वो उसके पहिए के नीचे आए, अपने खिलौने एक तरफ छोड़ करके उसे खींच लेते हैं और उसके माता पिता को सौंप देते। जब तक वो आ ही जाते हैं वो उसको संभालते हैं और ये अपने टूटे खिलौने अपने कपड़ों में समेट करके और आगे बढ़ जाते हैं अपने घर की तरफ। वो दोनों माता पिता अपने बेटे को गोद में चिपकाए सोचते हैं कि इससे क्या पूछें, 11 वर्ष का बेटा है, किसका है क्या पता है। चलो फिर भी इसके माता पिता को तो धन्यवाद दे ही दें, इसी के पीछे पीछे चलते हैं, पहुंच जाएंगे इसके पीछे चल के इसके घर। ये तो कुछ बोले नहीं, ये तो कुछ कहा ही नहीं इसने कि मैंने तुम्हारे बेटे को बचा लिया है, अब बताओ मेरे लिए क्या देते हो तुम, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। वो जाते हैं पीछे पीछे और पहुंच जाते घर तो माँ तो घर पे मिलती है, और नरेंद्र माँ के बाजू से घर के अंदर चले जाते हैं। माँ इन दोनों को देखती है जो गृहस्थ थे, क्या बात है आप मेरे बेटे के पीछे क्यों आए, क्या कुछ उसने गड़बड़ कर दिया। बोले नहीं नहीं हम तो आपके लिए धन्यवाद देने आए हैं, और सारी घटना वो सुना देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ और आपके बेटे ने अपनी जान पर खेल कर, उसके खिलौने भी टूट गए आप देखिएगा, लेकिन उसने हमारे इस खिलौने को इस चेतना को बचा लिया। माँ भागी भागी भीतर जाती है, 11 वर्ष 12 वर्ष के नरेंद्र को गोद में उठा करके और रोने लगती है, और वो खुशी से रोती है। वो कहती है कि आज मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया जिसने कि माटी के खिलौनों को टूट जाने दिया लेकिन चेतना को संभाल लिया। ये बहुत बड़ा प्रतीक है। हमारा दृष्टिकोण क्या हो गया है आजकल? आज हम चेतना को संभाल रहे हैं या कि जो टूट जाने वाली चीजें हैं उनको समझ रहे हैं? हम कितने संवेदनशील हैं? हम अपने सामान के बारे में, अपने इंद्रिय के विषयों के बारे में बहुत संवेदनशील हैं, ये हमसे छिन ना जाए, ये टूट ना जाए, ये बिखर ना जाए, ये बने रहे, लेकिन चेतना निरंतर बिखरती टूटती और मलिन होती चली जाती है, उसके प्रति हमारी संवेदनशीलता नहीं है। हमको विचार करना चाहिए और अपने जीवन को इस तरह हम अपने विकास के लिए उत्सुक हों, सजग हों, संवेदनशील हों तो जरूर से हमारा विकास होगा। इसी भावना के साथ हमारा कल का मन ऐसा है, वैसे वो खुद ही निवेदन तो कर रहे हैं, उनने हमसे वहाँ भी किया, मुझे फॉर्मेलिटी में उतना मज़ा नहीं आता, मैं खुद ही कह देता हूँ। तो कल फिर मैंने सोच लिया है कि मैं कल सुबह भाग्योदय जाऊँगा और कल अपन रविवार को 8:30 बजे वहीं बैठ करके और जो भी विचार करना है जीवन के लिए वो विचार करेंगे। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि
तो सब ऐसा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं तो कहते नहीं, आज्ञा विचय धर्म ध्यान करने वाला निरंतर विचार करता है कि मेरे लिए मोक्ष का मार्ग क्या है, क्या बताया है भगवान ने और मेरी उस पर श्रद्धा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि संसार की चीजों पर ज्यादा रुचि हो जाए और धर्म में कम रुचि रह जाए, ऐसा विचार करता है। आज्ञा विजय है। जब किसी से कोई चर्चा करता है तो उसमें कोई चीज अटक जाती है, नहीं समझ में आती, तो कहता मेरी बुद्धि में नहीं आती, लेकिन भगवान ने जैसी कही सो वैसी है। ऐसा कर पाते हैं क्या अपन 24 घंटे में? आप करते हो तो शायद ही है, कोई नहीं करता होगा। बिचारी कभी कोई माता पिता आपस में बैठ करके और फलाने के दिव्याओ हो को कैसो करने हो, घर को कैसो करने, ये बात के लाने तो 10 दफे बैठी हुई है 24 घंटे में, मगर इस बात के लिए नहीं बैठे होंगे कि गृहस्थी तो करने बसा ली, अपने लिए भगवान का क्या उपदेश है, भगवान की आज्ञा क्या है अपने लिए। गृहस्थ है अपन, शाम को बैठ के दो जने जिनने गृहस्थी आगे बढ़ाई है वे बैठ के शाम को विचार करत के भगवान की का आज्ञा है हमारे लिए। एक गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, हम दोनों बैठ करके इस बात पे विचार करें। तुम्हें जीव का स्वरूप आता है या नहीं आता है, तुम्हें सात तत्व आते हैं कि नहीं आते, इस पे किसी ने डिस्कशन नहीं किया। किसी ने विवाह करके अगले दिन सुबह बैठ के ये नहीं विचार किया होगा कि सात फेरी तो हो गई, मनो जा बताओ कि सात तत्व आउत के नहीं आउत, क्योंकि वो प्रयोजन भूत है। फिर आप किस आज्ञा विजय की बात करते, फिर आप कौन सी बड़ी बड़ी बात करते हैं? शुरुआत तो यहां से होनी चाहिए। मैं बहुत मुश्किल में हूं इतने वर्षों से, 16 वर्षों से मैं प्रवचन में बहुत सारी बातें कहता हूं जितनी बनती हैं उसकी अच्छी से अच्छी बात, लेकिन आदमी जहां का तहां। लोग मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि आज तो, पहले तो कोई प्रवचन सुनाने वाला नहीं था, आज तो बढ़िया प्रवचन होते हैं, धर्म होता है महाराज जी, लेकिन हर जगह हर समाज में हर घर में फूट है, मतभेद है, कलह है, दुनिया भर की बातें हैं, आखिर फिर आप लोगों के इस प्रवचन इत्यादि का क्या मकसद हुआ? तो फिर मुझे लगा कि नहीं, बात तो कहीं ना कहीं कुछ गलत होती है। वो ये है कि व्यक्ति जहां है वहां परिवर्तन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सुन रहा है या कि चीजों में शामिल हो रहा है। आप रथ यात्रा है सुबह 12 बजे शामिल होंगे, लेकिन ध्यान रखना भगवान के पीछे चलने की हिम्मत बहुत कठिन बात है। भगवान के रथ के पीछे तो आप चलेंगे, लेकिन कभी जीवन में भगवान के पीछे चले? आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान आपने 24 घंटे करा क्या? नहीं करा। भगवान के पीछे चलना उसका आशय यही था कि आज तो भगवान के पीछे चलने की आदत, ऐसे ही 24 घंटे जहां जो बात आवे उसमें विचार करना। कौन व्यक्ति होगा जो विचार करता होगा, 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करता होगा? नहीं करता। बैठ गए सवेरे से पाठ कर लो 12 भावनाओं को, 10 मिनट लगा टिकी टिकी, लेकिन उस समय जबकि कोई चीज कांच की हमारे हाथ से छूट के नीचे गिर गई है, उस समय कोई विचार नहीं है, बल्कि चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। देखो ये है वस्तु स्वरूप, कांच का था क्षण भर में टूट के और गिर गया, ये भी जो है ऐसे ही है, किसी दिन ऐसे ही टूट करके गिर जाएगा। अनित्य है, यहां संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। हम यहां परेशान होते रहते कि जी अच्छी है, जी अच्छी है, जी हमेशा रही आएगी, नहीं हमेशा नहीं रहती। बस ऐसा विचार करके फिर अपने काम में लग गया। बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा विचार आ पाना, ये यहां से शुरू होगा धर्म, बिल्कुल एक एक कदम से शुरू होगा। विपाक विजय, जब भी पीड़ा होती है जब भी हर्ष होता है, दोनों स्थितियों में, पीड़ा के समय तो आदमी थोड़ा सा विचार भी कर लेता है लेकिन हर्ष के समय नहीं करता, हर्ष होता तो भूल जाता, जैसे ही कोई हर्ष का काम हो तुरंत याद आ जाए, अरे किसी साता वेदनी कर्म के उदय से ये हुआ है। कर्म परवशे शांते दुख रंतरितोदय, पाप विजय सुखे नास्था श्रद्धा ना कांक्षना स्मृता। अनाकांक्ष होकर के जीवन जीता है, क्यों अनाकांक्ष हो जाता? क्योंकि वो जान रहा है कि सुख और दुख सब कुछ कर्म परवशे, कर्म के उदय में। आज हर्ष है, कल हो सकता विषाद हो जाए, लेकिन मैं हर्ष विषाद नहीं करूंगा, क्योंकि हर्ष विषाद करना मेरा स्वभाव नहीं है, मेरी प्रकृति नहीं है, मेरा स्वभाव तो हर्ष विषाद में शांत रहना है, समता धारण करना है। क्या ऐसा विचार अपन हर्ष विषाद के क्षणों में करते हैं? रोजमर्रा के जीवन में देखना, हम कहते कि 100 बातों की जगह एक बात में कर लेना, चलो 100 मौके पे चूक जाओ लेकिन एक मौके पे तो सावधान हो जाएं। किसी भी मौके पे जैसे ही हर्ष का समय आवे और हम शांत रह जाएं कि नहीं इसमें क्या बात है, कर्म के उदय में आता है सब। और ऐसे ही जब बाहर हम चलते देखें, किसी को दुखी देखें तो उसकी मदद करने दौड़ जाएं, लेकिन जब अपने ऊपर दुख आवे तब किसी की मदद की अपेक्षा नहीं रखें बल्कि विचार करें कि मेरे किसी पूर्वार्जित कर्म का फल मिल रहा है, विपाक है ये। और कर्म के साथ बड़ा मजा है कि कर्म अपना फल देकर के मर जाता है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, सो अच्छा है। अपना फल देके यहीं के यहीं निकला जाता है, पता नहीं ये कब उदय में आता हो, कब मुझे भोगना पड़ता है, इसके लिए आज तो सजग हूं, जागृत हूं मैं। ऐसा विचार जो करता है वो करता विपाक विजय धर्म ध्यान और अपाय विजय धर्म ध्यान, वो भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अपाय विजय धर्म ध्यान विचार करें, किसी की स्वयं के ऊपर ही घटा लें, अपने भीतर आई हुई पीड़ा का उपाय क्या है, उपाय यही है कर्म फिलॉसफी समझ ले, कर्म सिद्धांत समझ ले। पुराना कर्म उदय में आता है, सो जरूरी नहीं है कि वो नए कर्मों को बांध के जावे। मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप, होगा न बंध तबलों जबलों न राग, चिंता नहीं उदय से बन बीत राग। आ रहा है उदय में, बहुत सीधी सी चीज है, कोई भी हमने बोया होगा तो अंकुरित होगा, अंकुरित होगा लेकिन उसका बीज बने ही, नया वो फल देवे ही, कोई जरूरी नहीं कर्म अपना फल देने के लिए उदय में आवे और हम समता परिणाम रखें तो तीन बातें एक साथ हो जाती। पहली बात तो ये कि कर्म अपना बिना फल दिए खिर जाता, क्योंकि हमने फल लिए ही नहीं, वो हमें दुखी करने आया था, हम दुखी हुए ही नहीं, हमने उसका फल लेने से इनकार कर दिया। ऐसा तो अपन कर लेते हैं संसार के कामों में, ऐसा कर लेते हैं, ये हमारे हाथ की चीज है, हम लेना चाहें तो लेंगे, नहीं लेना चाहें नहीं लेंगे। कर्म के साथ हमारा जो बिहेवियर होगा, हम जैसा व्यवहार करना चाहें, कोई व्यक्ति हमारे पास में आवे और हमें चार चीजें देवे और हम नहीं लेवे तो क्या है, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। इसी तरह कर्म अपना फल देवे, हम लेने से इनकार कर देवे, हम नहीं होंगे दुखी, असाता वेदनी का उदय आता रहे। बहुत साहस की आवश्यकता है, जो धर्मात्मा होगा वो ही करेगा इस तरह से, जिसको अपाय भी चाहिए, यही तो अपाय है, उपाय कर रहा है वो। उपाय क्या है इस पीड़ा से बचने का? उपाय यही है कि हम फल नहीं भोगेंगे, फल में आसक्त नहीं होंगे, हम कर्तृत्व बुद्धि नहीं लाएंगे। आखिरी बात ये आ जाएगी, और कर्तृत्व बुद्धि तो आए बिना रहती नहीं गृहस्थ के लिए, अच्छा हो जावे तो कहती मैंने किया और हर्षित होता है, और जब कोई बुरा होता है तो चार लोगों को दोषी ठहरा के कहता कि ये सब न होते तो काहे को मेरे जीवन में ऐसा बुरा हो जाता, जबकि आया उसके कर्म का उदय है। इतना सा इतना अपाय विचय बहुत आसान है ये धर्म ध्यान, नाम बड़े ही कठिन है, नए लोगों के लिए कठिन होगा कि अपाय विचय क्या चीज है। नहीं, विचार करना कि इन कर्म के उदय में होने वाले सुख दुख से बचने का उपाय क्या है, इसी का नाम अपाय विजय धर्म ध्यान। उपाय यही है कि हम उसके फल को स्थगित कर दें, हम कर लेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, जैसे कि पेड़ में आम लगा हो आप उस चीज को बहुत आसानी से समझते हैं, ऐसा ही कर्म को समझना चाहिए। कर्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम उनसे डरे डरे फिरते हैं इसलिए हमें कर्म परेशान करते हैं। क्रिएशन इज नॉट मोर देन क्रिएटर। कभी कोई चीज सृजित की हो किसी व्यक्ति ने तो जो सृजन करने वाला है वो बड़ा होगा कि जो चीज सृजन की गई है वो बड़ी होगी। क्रिएशन इज नॉट मोर देन क्रिएटर। हमने कर्म इजाद किए हैं, कर्मों ने थोड़ी हमें बनाया है, कर्म हमारे हाथ का मेल है, कर्म हम करते हैं। एक कर्म वो है जो किए जाते हैं, एक कर्म वो है जो बनते हैं, एक कर्म वो है जो भोगने में आते हैं। तीनों का कर्ता कौन है? मैं हूं आत्मा, अशुद्ध दशा में, शुद्ध दशा में वो भी नहीं। ऐसा विचार होना चाहिए, तब तो मजे की बात। क्या करते हैं, पेड़ में आम लगे हैं, थोड़े कच्चे हैं लेकिन खाने का बड़ा मन है, तो क्या करते हैं अपन, तोड़ लेते हैं। और आप जैसा चाहो उसका उपयोग कर सकते, तोड़ करके चटनी बना के खाना चाहो उस चटनी बना के खा लो, वो चटनी भी खट्टी लगा तो उसको में शक्कर डाल के खाना चाहो उसे शक्कर डालो, लोंजी बना लो, और ऐसे ही चटनी में नमक डाल के खाना तो नमक डाल के खा लो, और अगर ज्यादा आपकी इच्छा है तो तोप दो, चार पांच दिन तक साता पकड़ो उसे तोप दो, उसके भीतर भूसा के भीतर से पको निकाल रहे हैं आप जैसा चाहें उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। ऐसे ही आम के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसे ही कर्म के साथ में हमने बांध लाए हैं, ठीक है हमने आम को पेड़ लगाओ है, फल भी लग गए हैं, अब फल के साथ हमें क्या करना है, हम चाहें तो उसकी चटनी बना सकते कर्म की, हाँ चटनी बना सकते, जब बोधय में आए सो ही हम चटनी बना देंगे उसकी, हम नहीं आने देंगे उसकी, हम उसमें शक्कर डाल देंगे। शक्कर डालने का अर्थ क्या है कि हम असाता को साता में कन्वर्ट करके भोग लेंगे, परमुख से भोग लेंगे, हम स्वमुख से नहीं भोगेंगे हम उस, और हम जब चाहें तो उदीर्णा कर सकते हैं, 15 दिन बाद पकने वाला है, हम तो 5 दिन पहले ही तोड़ करके भूसा में पका लेंगे, कर्म अपने आप फल दे करके निकल जाए, उदीर्णा कर लेंगे। उत्कर्षण अपकर्षण उद्गी उदीर्णा संक्रमण, ये क्या है, यही तो चीज है, कोई बड़ी कठिन चीज थोड़ी है, हम रोज कर सकते हैं अपने कर्म के साथ। और 3 बातें होती हैं जब हम समता रख लेते हैं, अपाय विजय धर्म ध्यान हमारे जीवन में आ जाता है, तब कर्मों की स्थिति क्या होती, उदय में आते हैं तो फल नहीं दे पाते हैं, और इतने ही नहीं अगर हम उसमें हर्ष विषाद ना करें तो नए फल के लिए वो बंध को प्राप्त नहीं होता है, नया कर्म नहीं बंधता है, और वर्तमान में जो बंधा हुआ कर्म था वो निर्जरित हो जाता है। और 4थी बात बड़े से बड़ी कि बात नहीं बिगड़ती, क्रोध का उदय आया और हम शांत रह गए, क्या क्या काम किया अपन ने, एक तो उसका फल नहीं लिया, जो क्रोध बंधा था उसको निर्जरित कर दिया, आगे के लाने क्रोध न बंधे इस बात का इंतजाम कर लिया, और क्रोध करने से जो बात बिगड़ जाती बा भी नहीं बिगड़ी, 4 काम कर ले अपन ने एक साथ, जरा सा समता धारण करके, जरा सा उसके स्वरूप को समझ करके, कह रहे ये मेरे कर्म का उदय आया है, मुझे इसमें शांत रह जाना है, अन्यथा बात बिगड़ जाएगी, और अभी नहीं बहुत लंबी बिगड़ेगी बात, वर्तमान में तो बिगड़ेगी और बहुत समय तक के लिए बिगड़ेगी, जितना स्थिति अनुभाग में इसमें पटक दूंगा, जितनी मेरी कषाय होगी तीव्रता मंदता, उतनी ज्यादा स्थिति अनुभाग इसमें पड़ जाने वाला है, और बाद में मुझे ही पीड़ा देगा, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं वो करते भी है साथ में बंधता भी है और भोगना भी पड़ता है, अकेले करने से छुट्टी नहीं मिलती कर्मों के, कर्म बंधते भी, जो करते हैं वो ही बंधता है, जो बंधता है वो भोगना पड़ता है, ये स्थिति है। अपाय विजय धर्म ध्यान करने वाला बड़ा जागरूक रहता, ऐसा आप सुन रहे होंगे तो बड़ा कठिन लगने लगा होगा कि जो तो बड़ो उपद्रव को काम, हम तो सोचते कि हमने पूजा वूजा कर ली से हो गए हम धर्मात्मा, इतना विचार करना पड़ेगा, हाँ भैया इतना विचार करना पड़ेगा, 24 घंटे करना पड़ेगा, 1 मिनट से नहीं होने वाला है, निरंतर विचार का मतलब है जो निरंतर चिंतन चलता रहता है, जहां भी कोई चीज आती फौरन वो विचार करता, कह रही वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, और वस्तु स्वरूप ध्यावते मन पावत विश्राम, फौरन उसका मन जो है विश्राम को प्राप्त हो जाता है, जैसे वस्तु स्वरूप उसके ध्यान में आ जाए, और आज इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है लोगों के लिए, इसलिए व्यक्ति जो है सब कुछ करते हुए धर्मात्मा हो कहलाने के लायक होते हुए भी अंतरंग से धर्मात्मा नहीं हो पाता, बाहर और भीतर दोनों तरफ ऐसी बुद्धि जागृत होनी चाहिए, ऐसा विवेक हमारे भीतर जागृत होना चाहिए। संस्थान विचय क्या है, जब अपना घर बनाने लगो सोई संस्थान विचय को ध्यान आ जाए कि जो कावत बना रहे, एक ही संस्थान की तो बहुत चिंता है कि जो इतने टॉयलेट बनना चाहिए, यहाँ किचन, यहाँ पर आपके ड्राइंग रूम, यहाँ पर डाइनिंग रूम, इस संस्थान को बनाने के लिए तो कितना चिंतित हूं, लेकिन ये लोक किसने बनाया है, किन्हू न करो न धरेव को षट द्रव मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता दुख सह जीव नित, उस समय लोक भावना याद आ जावे कि लोक की संरचना वास्तव में क्या है, मैं तो इसी संरचना में उलझ रहा हूं, ये बहुत बाह्य संरचना है, लोक की संरचना तो ऐसी, और उस लोक के भीतर मैं कितना यहां पर भ्रमण कर चुका हूं और अपने भ्रमण का ही उपाय करता चला जाता हूं, कहता जरूर हूं कि मैं भ्रमण से उकता गया हूं, लेकिन करता तो
सारे उपाय भ्रमण के। ऐसा विचार आ जावे उस समय तो सब धरी रह जावे, ईंट पत्थरा जोड़ जोड़ के बनावे कि बुद्धि खत्म हो जाए। और अगर रहेगा भी तो ये मान के रहेगा कि भैया एक दिन खाली कर देने हैं, 60-70 साल जितते हैं सोई में रहने हैं, वो खाली कर देने, दूसरे को आ जाने यही में, हम भले अपने संगे तो लेने जाने, सब जानते हैं। लेकिन बनाते समय, ईंट ईंट रखते समय, बनवाते समय और बाहर खड़े खड़े देख करके प्रसन्न होते समय, मेरी बिल्डिंग की डिजाइन देखो बिल्कुल एकदम लेटेस्ट है, और लोक की संरचना का विचार करो, उससे अप टू डेट कोई चीज नहीं हो सकती है। ना उसे किसी ने बनाया है, ना कोई उसे मिटाता है, ना कोई उसे धारण करने वाला है, वो तो उत्पाद वे द्रव्य वस्तु स्वरूप है, उसमें निरंतर होता चला जाता है और हम उस उत्पाद भय में ही चमत्कृत हो जाते, द्रव्य को नहीं देख पाते, उत्पाद में प्रसन्न होते हैं, नष्ट हो जाते। जैसे कि एक कथा नहीं आती है कि राजा के दो बेटे थे, सो एक बिटिया थी और एक बेटा था, सो मुकुट था राजा के पास में, तो मुकुट का हार बनने लगा तो बेटा रोने लगा, और बिटिया खुश है कि हार बन रहा है, और बेटे का मुकुट टूट रहा है तो खुश है, और जो राजा है वो कह रहा मेरा क्या बिगड़ने वाला, सोना तो सो मुकुट में है, सो हार में है, मुझे क्या दिक्कत है, सोने का मुकुट है सो सोने का हार है। कितनी समझदार हृदय श्रवण के लिए लिखा हुआ है कि वर्षों वर्षों मौन धारण करता हो, उपास करता हो, वन में रहता हो, सब कुछ करता हो, लेकिन समता न होवे तो काय को श्रवण है, काय को साधु। ऐसे ही लिखा श्रावक के लिए कि सब कुछ होवे, बड़ा पढ़ा लिखा होवे, बड़ा आचरणवान कहलाता होवे, लेकिन अगर उसके जीवन में संतोष नहीं है तो काय का श्रावक है। संतोष ही होता श्रावक तो, हर बात में वो कहता ठीक है, कौन पड़े प्रपंच में, वैसे ही तो हमने गृहस्थी बसा ली, सो एक प्रपंच जो होगा वो ही गृहस्थी में, और उपद्रव करो सो और संसार होने। वो जानता है संसार से भयभीत है, वो संवेग है उसके भीतर, श्रावक के भीतर आज वो संवेग नहीं दिखाई पड़ता। आज बात तो इस बार करता है व्यक्ति कि मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन मुक्ति का उपाय जरा भी नहीं, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से तो कर लेता है, आंतरिक रूप से नहीं करता। क्या हुआ एक बार, एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, मैं थोड़ा सा जल्दी से थक जाता हूं, फिर भी अपन चर्चा धर्म के मामले में नहीं थकना चाहिए, संसार में थक जाना चाहिए कोई बात नहीं है, शरीर में भी थक जाए तो कोई बात नहीं, मन में नहीं थकना चाहिए। वो एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊं कि कैसे एक्सीडेंट हो गया, एक रेल का एक्सीडेंट हो गया, तो वो जो लाइन मैन था, वो जो बत्ती दिखाता था, उसको बुलाया गया, उससे गवाही ववाही ली गई कि भाई, वकील ने पूछा उससे कि क्यों जब ट्रेन निकली थी तब तुम वहां थे, कहना हाँ साहब हम थे, तुमने बत्ती हिलाई थी कि नहीं, कहना साहब हमने बत्ती हिलाई थी, रोशनी बत्ती तो बताना पड़ती है, रात में ट्रेन निकले तो बत्ती हिलाते रहते हैं वो लाइनमैन, तो उससे 3-4 दफे उसने वकील ने पूछा कि क्यों साहब आपने बत्ती हिलाई थी कि नहीं, उसने कहा बत्ती हिलाई थी, आप तो रात को सोत में जगा के पूछो तो हम कहते हैं कि बत्ती हिलाई थी, क्यों हिलाई थी हमने, उसमें क्या बात। तो अब जब वो बाहर आया, केस तो जीत गया वो, बत्ती हिलाई थी, जब केस जीत गया तो स्टेशन मास्टर ने कहा यार कि तुम हो बिल्कुल बुद्धू से, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन अपनी बात पे डटे रहे तुम कि बत्ती हिलाई थी, कहला साहब बे और कछु पूछते तो हम ही मुश्किल में पड़ जाते, बे अगर जा पूछ लेते कि जली थी कि बुझी थी तो बहुत मुश्किल हो जाती, हमने बत्ती तो हिलाई थी, मैंने जा थोड़ी उनने पूछी कि जली की थी कि बुझी थी, बुझी थी बत्ती और हिलाते रहे तो ट्रेन एक्सीडेंट तो हो गई। और ऐसे ही अपने साथ है कि साहब हम गए तो थे मंदिर, मानो भीतर की जली थी कि नहीं जली थी, बात तो बुझी थी, मनो हिलाई तो हती, सवेरे गए थे मंदिर तक, गए थे पूजा करी थी और स्वाध्याय करो तो सब करो तो, लेकिन भीतर कोई प्रकाश हो पाया कि नहीं, कहे के लिए किया था, बाहर की सारी क्रिया हमने करी थी लेकिन अपने आंतरिक विकास के लिए करी थी कि संसार के प्रपंच बढ़ाने के लिए, इतनी सी बात है। ये जिसको जब समझ में आ जाए, कोई जरूरी नहीं कि आज ही सबको समझ में आ जावे, ऐसी सबको समझ में आउट होती तो तीर्थंकर के पास जितने बैठी समुसरण में सोई भाव में चले जाने तो सबको मोक्ष नहीं होता, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम तो शायद एक आध कोई व्यक्ति को, और कब किसके लिए, एक बार आचार्य श्री से मैंने कहा कि क्या करें, रोज रोज जो है आप कहते कि धर्म सुनाना चाहिए और व्यक्ति को, कहना नहीं हमारा कर्तव्य है, पता नहीं किस बात से किस व्यक्ति का कब कल्याण हो जाए, कौन सा समय किसकी काल लब्धि कब आ जावे, और एक सिचड़ी सी बात, कोई बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी बात भी उसके मन में आ जाए, जैसे कि मारू सह मातू सह, नवोकार मंत्र भूल जाते थे, शिवभूति आचार्य थे और उनको कह दिया कि मारू सह मातू सह, रोष मत करो और तुष्ट मत हो, राग द्वेष मत करो, ऐसा सूत्र दे दिया था, वो ही भूल गए थे, सो कह ला तुस्माद भिन्नम तुस्माद भिन्नम, और एक दिन क्या हुआ था, तो उस मास भिन्नम की कथापन को आती बोध हो गया, तो किसको कब वेद विज्ञान होगा। हमें रोज रोज जो है धर्म की चार बातें सुनने की और अपने भीतर उनको गुनने की भी आवश्यकता है कि क्या विचार करें। दिन में बैठ करके जरूर से आपको 15 मिनट 10 मिनट अपने जीवन में सुबह शाम ये प्रक्रिया खत्म हो गई है। अपन लोग सामूहिक पूजन की प्रक्रिया तो करते हैं, मैं सोचता हूं कि सामूहिक घर के सब लोग बैठ के थोड़ा धर्म ध्यान भी करें सामूहिक रूप से। मैंने सजेस्ट किया था लोगों को, बहुत थोड़े लोग मानते हैं क्योंकि सारे उपद्रव वाली बातें हैं जी, घर गृहस्थी बहुत मुश्किल सी लगती है। हाँ देखना, चिट्ठी लिखते हैं और जबकि शादी हुई है वो की चिट्ठी डाल दे अपन कि हमारे फलाने फलाने देना शादी है, सो आदमी अपनी गुंजाइश निकाल के आउट जा, तो नहीं कहते कि हमें इन दिनों फुर्सत नहीं है और दूसरे दिनों में आ सका था, जा नहीं कहते। इसी तरह कोई के मरण हो जावे तो सुख दुख में हम एक चिट्ठी डालते हैं, सो सब हमारे घर इकट्ठे हो जाते। क्या साल भर में एक बार ऐसी चिट्ठी नहीं लिख सकत कि हम फलाने क्षेत्र पे जा रहे, आप भी उतई पहुंचो, हम वहीं धर्म ध्यान करेंगे इन तारीखों में, ऐसे नहीं डाल सकते। एक बार साल जैसी जी डालते हम के ब्याह में है, सो हमने सबको इकट्ठे होने, घर के लोग सब रिश्तेदार होंगे इकट्ठे, क्या ऐसे ही कोई एक चिट्ठी डाल करके कि हम तो इस तारीख में फलाने क्षेत्र पर जाएंगे, आप सब भी आओ, हम सब मिलकर के धर्म ध्यान करेंगे। ऐसा मौका भी हमें अपने जीवन में, और दूर नहीं भैया, तो कम से कम जैसे संडे मनाते हैं लोग कि भाई आज तो संडे है, फ्री है, चाहे जो करो सब सब कर सकते हैं, क्या एक दिन ऐसा नहीं हो सकता कि आज तो अपन सब लोग जो है सब संसार का संडे है, आज अपन धर्म ध्यान करेंगे सब बैठ करके, बच्चा बच्चा घर का बैठ कर, तब संस्कार शुरू होगा, तब कुछ बात बनेगी, नहीं तो ठीक है जैसा चल रहा है वैसे ही चलाते जाइएगा। जीवन को परिवर्तित तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही करना होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि शायद इसमें से कोई बात किसी के काम आए और वो अपने जीवन को परिवर्तित, तभी होगा परिवर्तन जबकि हम वस्तु स्वरूप को समझेंगे, जबकि हम अपने आत्मा के कल्याण के लिए जरा से चिंतित होंगे और चिंतित होकर के फिर उसके बाद कोई उपाय उसका करेंगे, धर्म ध्यान निरंतर करेंगे, तभी परिवर्तन आएगा। मैं तो भावना बा रहा हूं कि सब लोगों के अंदर ऐसा निरंतर धर्म ध्यान की भावना जागृत होवे, ऐसी भावना के साथ आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि
की थी, जो अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके लिए सिर्फ इतना ही कह दिया जाता था कि हाँ, बच्चों के लिए माताएं गले में हाँ पहराती हैं, गले में डला रहता एक सोने का वो, उस पर या चांदी का या तांबे का जिसकी जैसी गुंजाइश होती है उसमें क्या लिखा रहता है, हाँ लिखा रहता। हाँ का अर्थ है कि तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करना था, हाँ कभी भविष्य में ऐसा कार्य मत करना। उसके उपरांत जब इसके बाद भी अपराधी के लिए शिक्षा या सबक नहीं मिलता था तो दूसरा उनका दंड निर्धारित था, वह था मां तुम्हारे द्वारा यह कार्य क्यों हुआ। इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति न सचेत हुए तब फिर तीसरा सबसे जघन्यतम दंड दिया जाता था, धिक, तुम्हारे इस कृत्य को धिक्कार है। ये उस समय की सजा आज की फांसी की सजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि मनुष्य के लिए अपनी संस्कृति का सम्मान करना आता था। उस समय सरलता इसलिए थी कि आज की तरह भौतिक सामग्रियों का विकास इतना अधिक नहीं हुआ था और ना ही कोई आणविक शक्ति का आविष्कार किया गया था। उस समय कल्प वृक्षों के माध्यम से उनकी जीवन समस्याओं की पूर्ति इसलिए हो जाती थी क्योंकि वे संतोषी थे, सरल थे, एक दूसरे की पीड़ा में पीड़ित होना जानते थे, सर्वमैत्री का भाव उनके अंदर में जागृत रहता था। लेकिन आज हम उन्हीं के अनुयायी होकर के, उन्हीं के अनुचर होकर के अपने जीवन की दिशा को किस तरफ ले जा रहे हैं, ये स्वयं हमें प्रत्यक्ष रूप से समझ लेना है। हम कृषि संस्कृति को ताक पर रखते हुए सिर्फ भौतिक धन संपदाओं के पीछे दौड़ते हुए दुनिया के तमाम निम्नतम जो व्यापार जैनों के लिए नहीं करना चाहिए वे कर रहे हैं, चमड़े की वस्तुओं का व्यापार करते हैं, पोल्ट्री फार्म का धंधा जैनों के द्वारा संचालित होता है, इस तरह के अनेक अनेक ऐसे कृत्य हैं जो हमारे जैनत्व के लिए लांछित करते हैं। हम आज उनके निर्वाण दिवस पर उन्हें उनका पुण्य स्मरण करके कम से कम इतना सबक अवश्य लें कि कृषि संस्कृति को सुरक्षित रखें। अगर कोई श्रावक खेती करता है तो वो सबसे अच्छा कार्य करता है, और इसलिए सबसे अच्छा कार्य करता है कि वह अहिंसा को दृष्टि में रखते हुए कृषि कार्य करेगा, विवेक पूर्वक करेगा, जीवाणुओं की हिंसा कम हो इस भावना के साथ वह अपने अर्थोपार्जन के लिए जो भी पुरुषार्थ करता है उसमें धर्म का समावेश पहले कर लेता है। भगवान आदिनाथ सिर्फ धर्म के ही नेता नहीं थे, बल्कि वे एक समाज के नेता, राजनीतिक पुरुष थे। उन्होंने अपनी राज्य प्रणाली के लिए बहुत सुचारू ढंग से चलाया और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दैगंबरी दीक्षा धारण करके अपने जीवन को और सारे जगत के विश्व कल्याण की भावना से तीर्थंकरत्व को चरितार्थ किया और अपने जीवन में साधना की चरम ऊंचाइयों को छूते हुए आज परम निर्वाण पद को उपलब्ध हुए और संसार के कष्टों से, संसार के बंधनों से मुक्त होकर के उन्होंने आज परम सिद्ध परमात्म पद को प्राप्त किया। मनुष्य अगर चाहे तो अपने जीवन में विकास कर सकता है। मनुष्य का जीवन एक बीज की तरह हुआ करता है, जो अगर सुचारू भूमि में, उपजाऊ भूमि में, उर्वरा भूमि में अगर गिरता है और उसको समयोचित समय पर सूर्य का प्रकाश मिलता है और खाद पानी मिलता है, तो वह एक दिन पुष्पित पल्लवित होकर के वट वृक्ष का रूप ले सकता है, अपना विकास कर सकता है। अगर वही बीज कहीं ऊसर भूमि पर बो दिया जाए तो नष्ट हो सकता है। बीज के रूप में हमारा जीवन हमारे पास उपलब्ध है, अब हम उसे धर्म की भूमि पर अगर बोते हैं, संस्कारों की खाद उसके लिए मिलती है और त्याग तपस्या का जल उसके लिए विसिंचित होता है, और ज्ञान का प्रकाश अगर उसके लिए परिपूर्ण मात्रा में मिलता है, तो वह भी बीज एक दिन वट वृक्ष का रूप ले सकता है और एक छोटी सी आत्मा, वैसे सबकी आत्मा बराबर हुआ करती है जो संसार में आज पड़ी हुई है, ऐसी कलुषित आत्मा अपने कर्म कलमश को नष्ट करके एक दिन भगवत पने को उपलब्ध हो सकती है। हम भगवान का निर्वाण लाड़ू चढ़ा चुके हैं, लाड़ू अक्षत हुआ करता है। कुछ लोगों ने कल बर्फियां बनाई थी तो फिर उनको लाड़ू का रूप देना पड़ा, क्योंकि लाड़ू जिस तरह से अक्षत होता है, कहीं से भी उसको खाओ मीठा ही रहता है, उसी तरह निर्वाण का जो सुख होता है वो कहीं से भी उपलब्ध किया जाए, कहीं से भी शुरू किया जाए, उसका स्वाद हमेशा मीठा ही रहता है। संसार के बंधनों में पड़ी हुई आत्मा परमात्मा तभी बन सकती है जब हम भगवान आदिनाथ के बताए हुए उपदेशों पर चलेंगे, उनके अनुसार हम अपने जीवन प्रणाली को ढालना शुरू करेंगे, तब कहीं जाकर के हमें संसार के दुखों से मुक्ति मिल सकती है। युग के आदि में होने से उनके लिए आदिनाथ कहा गया है, वेदों में उनके लिए अष्टम अवतार माना गया है, 24 अवतार वहां पर भी होते हैं,